क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत रतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारी बातचीत एक बार फिर मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी के साथ होगी। आज आप कार्यक्रम का तीसरा भाग सुन रहे हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी के साथ हमारी बातचीत को जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले आप बता रहे थे कि आपने छोटी छोटी फिल्में भी तैयार की है, किस संदर्भ में ऐसा हुआ?
जब मैं पूर्वोत्तर के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ था, तो वहाँ की दूरदर्शन, अगर मैं ये कहूँ कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत हम लोगों ने की हिंदी कार्यक्रमों की, और उस समय ग्रामीण विकास को लेकर ढेर सारे कार्यक्रम आते थे लोग के प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच में, तो उसको लेकर के हमने टेलीफिल्म बनाई, हमने ये सीरियल्स बनाए, हमने छोटे छोटे नाटक लिखे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, तो करीब करीब 30-32-40 प्रोग्राम हमने दूरदर्शन आकाशवाणी ईटानगर के बनाए, जो आज भी वहाँ के आर्काइव में पड़ा होगा। और इतने ढेर सारे साक्षात्कार, बातचीत, माने सारे कार्यक्रम सरकारी जो कार्यक्रम थे उन्हीं पर केंद्रित होते थे, चाहे मत्स्य पालन पर ही क्यों न हो, कृषि उद्योग बागवानी पर क्यों न हो, लेकिन सब में मैं चाहता था कि हिंदी किसी न किसी रूप में वहाँ आगे बढ़े, और सारे प्रोग्राम हिंदी में होते थे। वहाँ का ईटानगर दूरदर्शन का कार्यक्रम हिंदी का केंद्र है, वो क्या हिंदी फलीभूत होती है, प्रसरित होती है, फैलती है, और उन मीडिया के माध्यम से हिंदी ने खूब वहाँ पूर्वोत्तर में अपना प्रचार प्रसार किया, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ के दूरदर्शन आकाशवाणी को बहुत कुछ दिया है। न जाने किसी भी विषय पर आप वहाँ अगर जाएं और पूछें कि आपके आर्काइव में इस विषय पर किसी का टॉक है, तो बोलेंगे अच्छा मिश्रा जी का एक टॉक होगा, हर विषय पर, हर अवसर पर। जी,
बहुत जल्द आप मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय से दूर हो जाएंगे, जहाँ आपने 5 साल से ज़्यादा समय महासचिव पद को संभालते हुए किया। क्या आप सचिवालय से एकदम दूर हो जाएंगे?
नहीं, पहले तो सचिवालय से दूर होने की मैं कल्पना नहीं करता। दो चीज़ें होती हैं कि आपकी स्थूल उपस्थिति मायने रखती है, सूक्ष्म
जी,
और भौतिक दूरी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी उपस्थिति वहाँ नहीं होगी
जी।
अगर मैं उद्दंड होके कहूँ तो मेरी आत्मा वहीं भटकेगी, जिन 5 वर्षों में मैंने इस सचिवालय को और अहर्निश दिया
जी।
24 घंटे मैं सचिवालय के बारे में सोचता रहा, मैं क्या कर सका इसका मूल्यांकन समय करेगा, इतिहास करेगा, और इतिहास कालदंड से कोई बचा नहीं है, इतिहास सब
है।
हाँ, सबका मूल्यांकन करता है, लेकिन मैंने अपनी क्षमता जितना कुछ मैं लेके आया था वो सब कुछ देने की मैंने कोशिश की, जितना मैं दे सका मेरा सौभाग्य, जो नहीं दे सका उसके लिए मेरा दुर्भाग्य
जी।
बहुत कुछ दिया जाना शेष था, अगर मैं कहूँ पूरी ईमानदारी विनम्रता से, और इस सार्वजनिक मंच से मैं बोल रहा हूँ, आभासी मंच से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैंने अपना 20% भी नहीं दिया
जी।
80% लेके वापस जा रहा हूँ, 80% मैंने 100% मैं दे सकता था
जी।
और क्यों नहीं दिया उसके लिए मंच उपयुक्त नहीं है जहाँ मैं कुछ खुलासा करूँ। कभी लिखूंगा तो जरूर लिखूंगा क्यों 100% हम नहीं दे पाए, उसके लिए कोई एक कारक नहीं, तमाम परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, जिसका खुलासा करना यहाँ उचित नहीं होगा, वो मेरे मन की बात है, वो कभी प्रकट होंगी तो होंगी, लेकिन जितना कर सका, जितना सहयोग यहाँ मिला, विशेष रूप से यहाँ की सरकार से खूब सहयोग मिला, और कभी झोली मैंने कटोरा लेके अगर मैं गया शिक्षा मंत्रालय तो खाली नहीं लौटा, अगर नहीं 5 रुपये डाला गया तो 1 रुपये का सिक्का तो डाल ही दिया गया,
कुछ
कभी कोई खोटा सिक्का नहीं उस कटोरे में किसी ने डाला, ये खुशी की बात है। यहाँ की विशेष रूप से यहाँ के अगर मंत्री की बात मैं करूँ, वो शिक्षा मंत्री जो भी प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा और कोई शिकायत नहीं, वहाँ से निरंतर सहयोग प्रोत्साहन मिलता रहा और आगे भी मिलेगा, क्योंकि आपके गोद में सचिवालय है, अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। डर यही है कि सचिवालय कुपोषण का शिकार ना हो जाए, सचिवालय का पोषण जरूरी है, अगर आपने हाथी खरीद लिया तो हाथी का चारा भी चाहिए
जरूर,
केवल भवन से कोई संस्था आगे नहीं बढ़ती है,
सर
संस्था अपने कर्म से आगे बढ़ती है, संस्था अपनी गतिविधियों से आगे बढ़ती है,
योगदान से,
संस्था में लोग आए, संस्था के माने बिना, कभी मैंने कहा था कि संस्था सगुण से निर्गुण की यात्रा कर रही है, माने धीरे धीरे संख्या घट रही है, संख्या बढ़नी चाहिए, एको हम बहुश्यामी की बात होनी चाहिए, यहाँ तो द्वैत से अद्वैत की यात्रा सचिवालय कर रहा है, जो दुखद है, जिनके चलते हम केवल 20% दे पाए, शायद 80% दे पाते।
मॉरिशस आने से पहले आप यूनिवर्सिटी के अधिकारी थे, भारत जाने के बाद आप किस ओहदे पर कार्य करेंगे सर?
मैं मूलतः अध्यापक हूँ, करीब करीब जनवरी महीने में 33 वर्ष की नौकरी पूरी हुई, 33 वर्ष 20 वर्ष पूर्वोत्तर के ईटानगर में, फिर 9 वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है जिसमें 9 से 16 तक वहीं था, और पेशे से अध्यापक हूँ, लौटूंगा तो फिर वही अध्यापन, वह है ना कि कठपुतली करे भी तो क्या, नाचना तो पड़ेगा ही, तो हम अध्यापक हैं, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, चराग का अपना कोई मकान नहीं होता।
मॉरिशस आने से पहले सर आप मॉरिशस को किस रूप में जानते थे?
मॉरिशस आने के पहले मैं अगर आपसे बताऊं कि हमने इस देश को अगर विद्यार्थी के रूप में जाना तो रामदेव, धुरंधर, अभिमन्यु, अनंत सरी के लोगों को पढ़ करके जाना, अच्छा। हिंदी प्रचारिणी सभा यहाँ है इस रूप में जाना, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, लेकिन इसके पहले यहाँ के साहित्य को पढ़ करके, यहाँ के लोगों को पढ़ करके जाना कि भारत के बाहर भी एक देश है, भारत जैसा देश है जहाँ हिंदी की अनंत संभावनाएं हैं, इस रूप में जाना। और 2009 में मैं आया था अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में, 2014 में आया था, और यहाँ आने के बाद तो विशेष रूप से जाना, और यहाँ आने पर जब मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया तो मुझे लगता है कि माँ के घर से मैं उसी के घर आया हूँ।
प्रोफेसर साहब, आपने मॉरिशस में 5 साल से ज़्यादा समय बिताया, आप यहाँ के रहन सहन, खान पान, यहाँ की मेहमान नवाजी और जनजीवन से पूरी तरह वाकिफ हैं, भारत पहुंचने पर मॉरिशस को आप किस रूप में याद करेंगे?
5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला जी। और रहन सहन, खान पान, एक तो ईश्वर ने इतना खूबसूरत टापू बनाया और आपके पूर्वजों ने इसे सोने का देश बना दिया जी। इतना सुंदर देश और इतने सुंदर लोग यहाँ के, मैंने कहा ना कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको देख के कोई निराशा हो जाए, या जिसने होता दूसरे देशों में जाए तो कोई रेशियल कमेंट कर दे, कोई टिप्पणी कर दे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कभी मुझे बाहर, मैं ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत के बाहर हूँ, लगता था यहीं हूँ, खान पान वही, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि यहाँ के शादी ब्याह में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, जहाँ कहीं भी गया तो यहाँ विवाह में जो खाना, जो भोजन परोसा जाता है वहाँ पूरा समाजवाद है, राजा के घर में विवाह हो चाहे रंग के घर में विवाह हो, वही 7 तरह का भोजन, एक जैसा भोजन परोसा जाता है और अद्भुत। और चूंकि मैं भी तो घर गांव से हूँ, भारत से हूँ, तो सारे मेरे प्रिय भोजन ही बनते हैं, और जिसे खाया मैंने तो खान पान अच्छा, रहन सहन अच्छा। यहाँ मैं देखता हूँ शादी ब्याह में वो पुराने गीत जब गाए जाते हैं, हल्दी के गीत जो भारत से लुप्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी बूढ़ियाँ आई थीं वो गीत जो हस्तांतरित करके चली गई हैं, आज भी वो गीत अपने पूरा ओरिजिनल फॉर्म में है, उसे बचाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गीत तभी बचेगा जब भाषा बचेगी, और भाषा बचाने का संघर्ष करना ही होगा, हर समाज में आंदोलन हुए हैं भाषा बचाने के लिए, यहाँ भी आवश्यक है भाषा बची रहे, तब संस्कृति बचेगी, तब आपके जो पुरनिया आए थे उनके सपने साकार हो पाएंगे। तो मैं एक अच्छी याद लेके लौटूंगा यहाँ से, तो और मुझे लगता है ना कि जब मैं लौटूं यहाँ से तो मुझे लगे कि नहीं, कुछ खालीपन जैसे हो उसे भरने की कोशिश में जाके करूं, क्योंकि इतना आसान नहीं कि यहाँ से मैं लौटूंगा तो जाते ही मैं इस स्थान को भूल जाऊं, क्योंकि भूलना मेरी फितरत नहीं है। दो चीज़ें हैं, फॉरगेट और फॉरगिव होता है ना,
हाँ जी होता है,
तो लोग कहते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये संभव ही नहीं है, न तो मैं फॉरगिव तो कर देता हूँ, अध्यापक हूँ, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाता, भूल नहीं सकता, उन घटनाओं को याद करके किसी को माफ़ कर देना ये बड़प्पन है
जी।
तो और वो घटनाएं बार बार जब आपको याद आएंगी तो भविष्य में आप थोड़ा सजग रहेंगे, तो ये देश बहुत याद आएगा, निश्चित रूप से याद आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष का कर्ज है इस देश का, यहाँ की आबोहवा मैंने जीवन जिया है, ऑक्सीजन लिया है और एक अच्छा जीवन जिया है। अब आपको बता दूं कि कभी किसी बीमारी के चलते कोई दवा जिसने ना खाई हो, इतना सुंदर मौसम, इतना सुंदर देश, खान पान अच्छा, लोग अच्छे, और इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ, और ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई गन रख के तो बोलवा नहीं रहा है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और अध्यापक हूँ तो दिल से ही बोलता हूँ, खरी खरी बोलता हूँ जी।
अपने कार्यकाल के दौरान आप की बहुत लोगों से जान पहचान हुई, जिनमें साहित्यकार, हिंदी शिक्षक व छात्र, अधिकारी आदि सम्मिलित हैं। मॉरिशस से विदा होने से पहले उन लोगों के लिए क्या कहना चाहें?
निश्चित रूप से मैं एक सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, मैं अधिकारी बन के नहीं आया था। हमारी माननीय मंत्री जी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हिंदी से भी बन के जाना, अधिकारी बन के नहीं जाना, तो मैंने उनके आदेश का पालन किया। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि एक अध्यापक को महासचिव के रूप में अगर भारत सरकार ने, यहाँ की सरकार ने चुना है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता के बीच जाएं। और वही मैंने कोशिश की, यहाँ के साहित्यकारों से संपर्क स्थापित किया, समाज सेवियों से, सैकड़ों वाले समाज के कार्यक्रमों में गया, और इसके लिए मैं आदरणीय गंगू जी का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे जोड़ा। और यहीं आके मैंने आर्य समाज को समझा, आर्य समाज की गतिविधियों को समझा, आर्य समाज यहाँ हिंदी के लिए क्या कर रहा है या सांस्कृतिक जो अस्मिता है उसकी रक्षा के लिए क्या कर रहा है, इसका मुझे भरपूर, और यहाँ के विद्यार्थियों से भी जुड़ने का मौका मिला। अच्छा होता अगर यहाँ मैं कुछ विद्यार्थियों को दे पाता अध्यापक के रूप में, जो सुयोग नहीं मिला, इसके लिए मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि कभी यहाँ तमाम संस्थाएँ अगर कभी बुला लेती, मिश्र जी आइए इस विषय पर आप विद्यार्थियों से दो बातें कर लीजिए, यह अवसर नहीं मिला मुझे, इसके लिए मैं अपने को ही दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। क्योंकि 5 साल तक न पढ़ाने के बाद जाके वहाँ पढ़ाना होगा तो जैसे प्रति ऊसर बंजर भूमि में हल चलाने जैसा, जाऊँगा हल चलाऊँगा फिर उर्वर बनाऊँगा अपनी चेतना को जागृत करूँगा। तो अगर यहाँ हो जाता तो उसी चेतना के साथ में लौटता, जो ना हो सका, लेकिन जितना मैं कर सका एक अध्यापक के रूप में, महासचिव के रूप में, यहाँ के लोगों से जुड़ करके लगभग लाखों लोगों से संपर्क हुआ, लोगों से मिला। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ मैं नहीं गया
जी।
और जिन्होंने बुलाया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर आपने बुलाया है तो मैं आपके यहाँ ना पहुँचूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं जाऊँगा ही जैसे भी, चाहे जीनी मरनी बरसी हो, शादी ब्याह हो, जो हो, हर मौके पर मुझे आप उपस्थित पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भारत का ही प्रतिनिधि नहीं हूँ, विश्व हिंदी जगत का प्रतिनिधि हूँ, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो हिंदी वहाँ उपस्थित होती है, लोगों को सचिवालय याद आएगा।
प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आज आप विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब तक पहुँचाने में तकनीकी सहयोगी मित्र सुनील लक्ष्मण जी का सहयोग रहा, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। आप श्रोताओं को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को जाता है। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
धन्यवाद MBC, आपको धन्यवाद, और अलविदा मॉरिशस।
क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।